Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धं सुद्धं पणमिय जिनेन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परूवणमोक्षम्। आचार्य कल पंडित टोडरलाल जी ने लिखी हुई है सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है। अभी हम पृष्ठ संख्या 18 पर आ गए हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है। कल हम ये बात देख रहे थे कि शास्त्राभ्यास का अवसर पाना कितना दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्राभ्यास की मुख्यता तो मनुष्यों में ही है और मनुष्य भव पाना कितना दुर्लभ है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य में हमने संख्या देखी, मनुष्यों की संख्या अल्प है, पर्याप्त मनुष्य संख्या अल्प है और बाकी देव असंख्यात है, नारकी असंख्यात है, तिर्यंच कितने अनंत है। क्षेत्र जो है मनुष्यों का रहने का क्षेत्र, वो तो 2.5 द्वीप प्रमाण है, देव तो ऊर्ध्वलोक में, कोई मध्यलोक में और कोई नीचे भी रहते हैं ना, भुवनवासी भी अंदर। नारकियों का तो अधोलोक में ठिकाना है और तिर्यंच पूरे लोक में रहते हैं। अब काल और भाव की बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो 18 पृष्ठ पर नीचे से चौथा पैराग्राफ, पुनश्च काल से, मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल अल्प है। मनुष्य पर्याय में रहने का काल का अर्थ है लगातार मनुष्य में से मरकर मनुष्य हो, फिर दोबारा मनुष्य, फिर दोबारा मनुष्य, फिर दोबारा मनुष्य, इसको कहेंगे मनुष्यों की स्थिति। एक होती है काय स्थिति, एक होती है भव स्थिति। एक भव तो मनुष्यों का पूर्व कोटि का हो सकता है और भोग भूमि का 3 पल्ल्य का हो सकता है, परंतु लगातार मनुष्य 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 ऐसे, तो मनुष्यों में रहने का उत्कृष्ट काल कहते उसको कितना है, तो कर्म भूमि की अपेक्षा पृथक्त्व कोड़ी पूर्व मात्र ही है। पृथक्त्व यानी कुछ। अब ये कुछ का प्रमाण यहाँ कितना है हम देखेंगे, मनुष्यों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है। तो देखो, मनुष्य तो स्त्री वेदी भी होते हैं, पुरुष वेदी भी और नपुसक वेदी भी, और लगातार किसी वेद, एक वेद में उनके लगातार उत्पन्न होवे तो कितनी बार उत्पन्न हो सकते हैं, पता है आपको, 8 बार। तो स्त्री पर्याय में लगातार 8 बार, पुरुष में लगातार 8 बार, नपुसक में लगातार 8 बार, 8 त्रिक 24 तो लगातार हो सकते, पर्याप्तों की बात चल रही है। और एक भव अधिक से अधिक कितनी कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी है, अभी हमने देखी थी
1 करोड़ पूर्व।
ये पूर्व किसे कहना, हमने बहुत बार देखा था, अभी दोबारा याद करेंगे। याद है एक पूर्व कितने वर्षों का होता है? हाँ हाँ बोलो। हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये कहाँ से निकाला, तो 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख। 84 लाख को क्या कहते हैं, 84 लाख वर्ष अकेले है उसको क्या कहते हैं अरविंद भाई? 84 लाख वर्षों की, जैसे हम 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख, 84 लाख के वर्ग को पूर्व कहा, तो 84 लाख को क्या कहेंगे, पूर्वांग कहते हैं। 84 एक पूर्वांग कितने का है, 84 लाख वर्षों का, और एक पूर्वांग मल्टीप्लाइड बाय एक पूर्वांग, एक पूर्व होता है, तो वो 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख यानी उसको गुणा करेंगे, 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, संख्या कितनी आती है, 70,56,000 करोड़ वर्ष। उसी को हम एक पूर्व कहते हैं। अब ऐसा एक पूर्व, दो पूर्व, तीन पूर्व, लाख पूर्व और करोड़ पूर्व, तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो 1 करोड़ पूर्व। आपके पहचान वाले है कोई 1 करोड़ पूर्व वाले? हाँ वीरेश भाई, आदिनाथ थे कितने, 84 लाख पूर्व के थे, उससे भी 1 करोड़ पूर्व ज्यादा है। कोई पता है आपको? सीमंद्र स्वामी 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले हैं, विदेह क्षेत्र में विराजमान है ना अपने यहाँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हाँ करोड़ पूर्व मैक्सिमम होती है, सबको उतनी होगी ही। अभी यहाँ की मैक्सिमम आयु कितनी हम मान लेते हैं, 100 साल, तो कोई 5 साल में भी मर जावे ना, तो यहाँ भी करोड़ पूर्व की आयु वाला भी जो बांध के आए उसके करोड़ पूर्व होगा, कोई अल्प आयु बांध के आता है उसके कम होगी। तीर्थंकरों के अभी तो उनकी 1 करोड़ पूर्व की है।
सभी जो 20 तीर्थंकरों के
सभी की कितनी है, 1 करोड़ पूर्व की है। तो यहाँ क्या लिखा है, कर्म भूमि की अपेक्षा लगातार कितने हो गए, तो पृथक्त्व कोडी पूर्व, यानी 1 करोड़ पूर्व की एक भव उसका, 1 कोटि पूर्व कहो या करोड़ पूर्व कहो एक ही बात है। तो 1 करोड़ पूर्व का एक भव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो पृथक्त्व में कितना लेना, तो अभी हमने देखा था स्त्री के 8, नपुंसक के 8, पुरुष के 8। अब ऐसा होता है कि उसके बाद एक मनुष्य पर्याप्त का भव हो जाए, एक भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए, अधिक से अधिक 8 लगातार हो सकते हैं, फिर भी उसका काल है 1 अंतर्मूर्त।
उसको इसमें ऐड करना,
हाँ उसको ऐड करना उसको, क्योंकि उसको अगर लेते हैं तो आगे वाले 24 फिर दोबारा हो सकते हैं। पहले 8 8 8 पर्याप्त भव हुए, 1 1 करोड़ पूर्व के 24 करोड़ पूर्व हुए, अंतर्मूर्त वाला अपर्याप्त का भव हुआ, फिर लगातार 24 भव पर्याप्तों के हो सकते हैं। तो मनुष्यों में कर्म भूमि की अपेक्षा पहले कितने देखे हमने, 24, और फिर दोबारा 24, 48 पूर्व कोटि या करोड़ पूर्व। पृथक्त्व का वैल्यू, पृथक्त्व की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, 48, यानी कुछ करोड़ पूर्व, ऐसा लेना यहाँ पर पृथक्त्व का अर्थ। कहीं कहीं पृथक्त्व का अर्थ तीर्यंचों में 96 भी ले लेंगे, अब यहाँ मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तीर्यंचों की जब जो विषय आएगा तब उसकी बात करेंगे। हाँ सामान्य मनुष्यों को एक आयु नहीं, इतने भव लगातार मनुष्यों के हो सकते हैं। आयु अगर कहते तो एक भव की एक आयु गिना ही जाएगी, क्योंकि दूसरे भव की फिर दोबारा बांधेगा आयु, एक ही आयु बांधकर इतने करोड़ इतने मनुष्यों में नहीं रहेगा वो, एक एक भव की आयु एक बार बांधी जाती है, यानी नेक्स्ट भव के लिए हम इस भव में आयु बांधेंगे। मनुष्य ने मनुष्य की आयु बांधी, मनुष्य हुआ, फिर वहां उसने मनुष्य की आयु बांधी मर गया, फिर दोबारा मनुष्य हुआ, फिर तीसरी बार चौथी बार ऐसे कितने बार हो सकता है, तो ये 24 बार, फिर 1 अंतर्मूर्त, फिर दोबारा 24 बार, तो 48 पर्याप्तों के भव हो गए मनुष्यों के। उसको यहाँ क्या कहा, पृथक्त्व कोटि पूर्व। पृथक्त्व की वैल्यू यहाँ हमने कितनी देखी, 48। मिथ्या दृष्टि के ही होगी, क्यों, जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि मनुष्य तो देव में चला जाएगा, भले उसने मनुष्य आयु बांधी भी हो, तो क्षायिक होके वो मनुष्य में जाएगा, तो एक पूर्व कोटि की एक हो गई और दूसरी 3 पल्ले की हो गई, वो पॉसिबल है, उतनी तो हो सकती है। यहाँ इसलिए लिखा कर्म भूमि की अपेक्षा। अब इसमें हमको और थोड़ी बढ़ाना है, मनुष्य की स्थिति और बढ़ाना है, तो 48वां जो हमने करोड़ पूर्व की आयु देखी ना, 48वां भव, तो वहां 3 पल्ले रखना, यानी 47 करोड़ पूर्व कर्म भूमि में लेना और अंतिम भोग भूमि की आयु लेना,
उत्कृष्ट भोग भूमि वाला,
उत्कृष्ट भोग भूमि के तीन पल्ले की आयु, ये अंत में क्यों रखना? जय बेन, उसको पहले रखो ना, तीन पल्ले को लास्ट में क्यों रखना? आपको मालूम है सुशीला बेन? नहीं पता आपको जय बेन? हाँ दक्ष में, हाँ, भोग भूमि वाला मनुष्य हो या तिर्यंच हो, मरकर नियम से देव में जाता ही है। मिथ्या दृष्टि है वो भवनत्रिक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि है सौधर्म ईशान होगे, उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। अभी ये बातें हल्के हल्के सुनेंगे ना तो आपको याद रह जाएगी। तो कर्म, हाँ, कंपलसरी है नहीं किसी के लिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, अधिक से अधिक। चौबीस एक साथ चौबीस कैसे, आठ आठ करके चौबीस होते हैं, अकेले पुरुष के चौबीस नहीं हो सकते, हाँ, ना ही अकेले स्त्री के चौबीस हो सकते हैं, तीन अलग अलग वेदों में आठ आठ बार हो सकते हैं, फिर एक अपर्याप्त का भव करके फिर आठ आठ बार, यानी अड़तालीस भव हो सकते हैं लगातार।
ये नेसेसरीली पुरुष वेद पुरुष वेद पुरुष वेद मिले ऐसा भी नहीं है ना, यानी ऐसा भी हो सकेगा एक बार पुरुष वेद दूसरे बार,
हाँ कोई भी हो सकते,
दूसरे बार
यहाँ तो अधिक से अधिक पॉसिबिलिटी लगातार की, क्योंकि लगातार इसलिए कहा कि जब हम कहेंगे स्त्री वेदी मनुष्य, जिसको मनुष्य नहीं कहेंगे, तो उसका हिसाब लगाना है, तो वहां भी कहेंगे पूर्व कोटि पृथक्त्व या पृथक्त्व कोटि पूर्व, तो वहां पृथक्त्व की वैल्यू आठ बार हो जाएगी।
यानी आपका ये कहने के पृथक्त्व जब कहते हैं तब इट वेरीज,
हाँ इट वेरीज, उसकी वैल्यू जो है कुछ
ऐसा लेना,
कुछ यानी हम कहते ना गिने चुने,
जनरली बिटवीन थ्री टू नाइन ऐसा भी एक,
हाँ, पृथक्त्व का सामान्य उसका जो अर्थ है तीन से लेकर आठ नौ, उसको पृथक्त्व कहते हैं, परंतु यहाँ जो पृथक्त्व करोड़ पूर्व कहा है उसकी कितनी संख्या है तो वो हमने देखी, मनुष्यों के बारे में यहाँ पृथक्त्व का अर्थ अड़तालीस है। तथा अन्य पर्यायों में उत्कृष्ट रहने के काल एकेंद्रियों में तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र और दूसरों में संख्यात पल्य मात्र, दूसरे ने तीन ही गतियां हैं यानी अभी मनुष्यों को छोड़कर तीन है, तो तिर्यंचों में रहने का काल कितना है? एकेंद्रियों, अभी तिर्यंचो पंचेंद्रियों को छोड़ दो, अकेले एकेंद्रियों में भी कोई जीव चला गया और लगातार एकेंद्रिय 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 बना रहा, तो कितने काल तक एकेंद्रियों में घूम सकता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, एक पुद्गल परिवर्तन अनंत 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 काल है, तो ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन लगातार एकेंद्रियों में यानी तिर्यंचो में रहने का काल, दूसरों में यानी किस में अभी रह गए, कौन रह गए? देव और नारकी, तो देवों में लगातार रहने का काल कितना है? एक ही भव, उसमें तो दो चार भव नहीं हो सकते, जैसे मनुष्य 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 मरकर मनुष्य हो सकता है, तिर्यंच मरकर तिर्यंच तिर्यंच होता है, वैसे देव मरकर ना देव होता है ना नारकी मरकर नारकी होता है, तो उसका एक भव लेना है, तो एक भव कितने होता है? तो सागरों में होगा, तो सागर यानी कितने? संख्यात पल्य, यहाँ लिखा ना संख्यात पल्य है, तो एक सागर में कितने पल्य होते हैं पता है आपको? एक सागर में पल्यों की संख्या कितनी है? हाँ लक्ष्मी बहन, दस कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर। अभी हम मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, तो देवों में या नारकियों में उत्कृष्ट आयु कितनी है? तैतीस सागर, तो तैतीस सागर उसको भी संख्यात पल्य कहा है, क्यों? एक सागर में दस कोड़ा कोड़ी, तो तैतीस सागर में कितने? 330 कोड़ा कोड़ी, उसको भी संख्यात कहेंगे, ख्याल में आई बात ये? हाँ, वहां ये बात है उसकी तो एक ही आयु होती है, देवों में लगातार देव से लेकर देव 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 ऐसा नहीं होता है जैसे मनुष्यों में हुआ था। हमने द्रव्य से देखा, इन्हें संख्या से, क्षेत्र से देखा, और अभी काल यानी लगातार उस पर्याय में रहने का काल देखा। अब भाव से बताते हैं, भाव से दुर्लभपना कैसे लेना। पुनश्च भाव से तीव्र शुभाशुभपना रहित, तीव्र यानी अति शुभ, शुभ की तीव्रता हो जाए तो देव में चला जाए, अशुभ की तीव्रता हो जाए तो नारकी में जाए, एकिनी में जाए, ये अन्य कहीं चला जाए। और यहाँ क्या कहते, मध्यम जैसे परिणाम, मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणाम है वो मध्यम टाइप की चाहिए, ना तीव्र शुभ है ना तीव्र अशुभ है। तो तीव्र शुभाशुभपना रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है।
देखो यहाँ पर एक बात बिल्कुल ख्याल रखना कि अगर कोई तीव्र अशुभ परिणाम करता है तो उसको नरक गति मिलती है, तीव्र शुभ परिणाम करेगा तो उसको देव गति मिलती है। तीव्र यानी कंपैरेटिवली, ऐसा हम बता नहीं सकेंगे क्योंकि अति तीव्र और अति मंद परिणामों में गति नहीं, मतलब आयु ही नहीं बनती।
अभी आयु बंद के बंधने के समय में उसके परिणाम कैसे है उसकी बात कर रहे हैं।
हाँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कैसा है, शुभा शुभपना रहित, यानी उस शुभ भी हो लेकिन कैसा हो, बहुत तीव्र न हो, ऐसे परिणाम वाला जो जीव होगा उसी को मनुष्यायु बंधेगी। और ऐसा परिणाम होना महादुर्लभ लिखा, अत्यंत दुर्लभ है। हमें पता नहीं, हमें अभी मनुष्य पर्याय मिली है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई एक बार तू अगर एकेंद्रीय में जावेगा और वहाँ खोटे खोटे यानी अशुभ अशुभ परिणाम होंगे, तीव्र अशुभ परिणाम होंगे, तो एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल अभी कितना बताया, असंख्यात उद्गल परावर्तन, ये नाम अभी याद रखने पड़ेंगे। हाँ, तो ये इतना काल वो तीरंज में रहेगा, इसलिए कहते ये परिणाम भी ऐसे हैं कि मनुष्य आयु बंधने के लिए जो परिणाम है वो भी बहुत रेयर है, इसलिए भाव से भी उसको दुर्लभता बताई। अभी तक तो तीन बातें हमने देखी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और अभी यहाँ भाव का वर्णन चल रहा है।
अन्य पर्याय के कारणभूत, अन्य पर्याय ने नारकी है, देव है, तीर्यंच है, उसके कारणभूत अशुभ रूप और शुभ रूप परिणाम होना सुलभ है। इस तरह ये शास्त्राभ्यास की दुर्लभता बता रहे हैं। शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्मभूमिया मनुष्य पर्याय, किसको लिया? वहाँ भी भोग भूमि वालों को भी छोड़ा है, इसलिए वहाँ कर्म भूमि की अपेक्षा पृथक्त्व कोटि पूर्व लिखा था। कर्म भूमि के मनुष्यों में ही शास्त्राभ्यास की मुख्यता है, यही होता है, ना नारकियों में, ना तीर्यंचों में, ना देवों में है। तो शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त, ये अपर्याप्त की भी एक अंतर्मूर्ति, इतनी तो आयु है उसकी, एक श्वास में अठ दस बार, ये जो काल है उतनी उसकी छोटी आयु है अपर्याप्तों की, और वहां तो कोई शास्त्राभ्यास का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो सम्मूर्छन जीव है। तो कौन शास्त्राभ्यास करेंगे? पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य, भोग भूमि में वहाँ उपदेश एक दूसरे को, मगर ऐसे शास्त्राभ्यास की वहाँ मुख्यता नहीं है,
वहाँ शास्त्र नहीं है ना, एक दूसरे को उपदेश देंगे जो सम्यक दृष्टि होंगे, और अन्य को
वहाँ ना मुनि होते हैं ना पांचवे गुणस्थान वर्ती होते हैं, चौथे गुणस्थान वाले होते हैं। तो शास्त्राभ्यास की मुख्यता यहीं पर है, क्योंकि भगवान की वाणी के अनुसार गणधरों ने शास्त्रों की रचना की, और वो मुनियों के, गुरुओं के, आचार्यों की परंपरा से आज तक हमें उपलब्ध है। यहाँ ये शास्त्र लिखे गए है, वह अन्यत्र वे अवेलेबल नहीं है। तो शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपना जानना, यानी अभी हम पर्याप्त है कर्म भूमि के मनुष्य है, तो हमने ये जो पर्याय पाई है वो दुर्लभ में दुर्लभ है, परंतु वो दुर्लभ में दुर्लभ पर्याय पाकर भी अब हम उसको कहाँ खो रहे हैं, वो पर्याय किस में हमारी लग रही है और काल किस में हम गंवा रहे हैं, इसका विचार करने जैसा है। क्योंकि जो हमें अभी हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी है, हम कुछ नहीं करना है, हम है। दुर्लभ में दुर्लभ जो बात है, जो किसी को नहीं हो सकती, वो हमें तो प्राप्त है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो प्राप्त हुई है तो शास्त्राभ्यास करना है, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो हम है ही। वहां सुवास, उच्चकुल, सुवास है ना जिसको कहते हैं ना, अच्छा रहना, ठहरना,
रहने का, खाने का, हाँ। पीने का प्रबंध जो होना है,
वास याने
रहना, वास याने, हाँ। निवास,
निवास। उच्चकुल, उच्चकुल में हम जन्म लिए हैं, पूर्ण आयु, क्योंकि हम देखते बचपन में कितने मर जाते हैं, कितने तो गर्भ में ही मर जाते हैं, पर्याप्त मनुष्य भव और गर्भ में ही मर जावे, कोई बचपन में मर जाते हैं, तो पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, अभी पूर्ण आयु तो मिली है मगर अभी पैरालिसिस हो गया है, या कुछ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी अनेक बातें हो सकती है। निरोगपना, सुसंगति, जिसको कहते हैं ना हम सुसंगति, यानी हम ज्ञानी लोगों के सहवास में रहे। धर्मरूप अभिप्राय, मंद कषाय रूप है और धर्मरूप अभिप्राय, यानी यहाँ अभिप्राय में भी है कि हम धर्म करें, वितरागता प्राप्त करें, पुण्य रूप भी परिणाम है उसके। बुद्धि की प्रबलता, यानी इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि जो कुछ हम सुन रहे उसको समझ सके, थोड़ा बहुत जितना हो सके याद हो सके और उसको हम निर्णय कर सके, इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। उत्तरोत्तर महादुर्लभ का एक जो है पहले नंबर का, उससे दूसरे नंबर वाला दुर्लभ है, दूसरे से तीसरा दुर्लभ है, तीसरे से चौथा दुर्लभ है, इसको कहते हैं उत्तरोत्तर दुर्लभ है। खाली दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ कहा, अत्यंत दुर्लभ है। वह प्रत्यक्ष देखते हैं, यानी है हम ये तो आजू बाजू को यहाँ वहां हम नजर डाले तो ख्याल में आते हैं कि पूछते हैं ना, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है या बहुत कठिनता से मिलते हैं, तो हम पूछा करते थे, अरे यहाँ तो प्रॉब्लम है कि संख्या बढ़ रही है मनुष्यों की और आप कहते दुर्लभ है, तो ये कैसा है? तो यहाँ जो मनुष्यों की संख्या है वो तो कांस्टेंट होगी, उसकी जो मैक्सिमम संख्या, तो वो पूरे ढाई द्वीप में मनुष्यों की संख्या गिनेंगे हम, खाली हमारे इतने से भारत में, भारत भूमि में है या अमेरिका में, उसकी बात यहाँ नहीं है।
देखो यहाँ पर हमने जो देखा है, अभी हम कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं कि सुवास, यानी हम अभी जैसा घरों में अच्छी तरह से रह रहे हैं और ये झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनमें फर्क है ना वास में, वो तो अच्छा मिलना बहुत मुश्किल है, उससे कहते हैं उच्च कुल मिले। कई लोग ऐसे हैं उनको भी अच्छे अच्छे घर हैं, इन कुल ऐसा खोटा है कि उसमें कुछ भी हो चलता है।
और सुवास में हम ऐसा भी ले सकते हैं, अभी याद आया मुझे, सुवास में आर्यखंड और म्लेंज खंड का जो कर्म भूमि की ही है, तो म्लेंज बन जाए तो वहां तो कोई शास्त्राभ्यास की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अवसर नहीं है, उसमें ये भी ले सकते हैं।
और देखो उच्च कुल मिलना उसे दुर्लभ है, उच्च कुल मिला भी तो पूरी पूरी आयु मिलना वो भी, पूरी पूरी आयु मिलना वो भी उससे, और पूरी आयु भी मिले लेकिन इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं होवे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वह भी डिफिकल्ट है। तो वो इंद्रियों का सामर्थ्य भी होवे लेकिन कोई बीमारी होवे, मान लो कोई कैंसर हो जावे, ख्याल में, और वो भी हो जाए वो भी ठीक है, उससे भी दुर्लभ तो जो हमारी संगति है, संगति यानी समझा, संग
यानी कहते हैं ना सत्संगति,
वो उससे और डिफिकल्ट है। और वो सुसंगति होवे, अच्छे अच्छे लोग है, कोई खोटा काम नहीं करने वाले, फिर भी धर्म रूप अभिप्राय नहीं होता है। अरे हमारे घर में देखो झांक के, वो भी धर्म रूप अभिप्राय वाले नहीं हो रहे, ख्याल में आए? देखो ऐसा हम एक एक पॉइंट को देख के सोचेंगे तो हमें पता लगता है कि हम इन रियलिटी कितने भाग्यशाली है। जो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि भाग्यवंतना काने आवाज पड़े, तो अपने को तो लगता है ये तो कोई ऐसी बात है, लेकिन ये अभी हमने मनुष्य पना जो द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से उसका जो रेयरिटी बताई दुर्लभता बताई उसके आगे ये बता रहे, तो सोचो कहाँ है हम अभी। बस एक ही काम बाकी है, एक ही कर्तव्य बाकी है कि अपने स्वरूप में लीनता चाहिए बस, और वो तो कोई ऐसी चुटकी बजा के तो आने वाली है नहीं। ये वारंवार शास्त्राभ्यास करके उसका मनन चिंतन करके बार बार हम कहाँ क्या कर रहे हैं इसका ध्यान रखते हुए अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाए तो ही यह मनुष्य पर्याय मिला वह सार्थक होगा। नहीं तो भले ना 100 साल आ गई हमें अभी के काल में, किसी को 100 साल मिला लेकिन शास्त्र पढ़ा ही नहीं, सत्संगति की नहीं, धर्मरूप अभिप्राय किया ही नहीं। तो गुरुदेव की भाषा में कहना हो हूँ वड़ियों क्या प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, 3 इंच गति जैसा तेरा आयु चल रहा है ऐसा कहते।
हाँ देखो वह प्रत्यक्ष देखते नहीं, ये बातें उत्तर उत्तर दुर्लभ है यानी बहुत अल्प लोगों में पाई जाती है, ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और इतनी सामग्री मिले बिना, इसको सामग्री कहा, ये जो इंद्रियों की जो सामर्थ्य है निरोगता है ये जो बातें है अनुकूलताएं है ये सारी, इसको सामग्री कहा। इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बन नहीं सकता, सो तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है, यानी ये सामग्री तो इतनी पाई है इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं। ये कोई अभ्यास नहीं करेगा तो पंडित टोडरमल जी का क्या जाने वाला है, उनका क्या नुकसान है, वे तो ग्रंथाभ्यास कर भी रहे पढ़ा भी रहे, तो सामने वाले को इतना बार बार इतनी दुर्लभता मनुष्य की बता के भी ये शास्त्राभ्यास करने की इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, तो कहते तुमको हट से भी हट करके नहीं नहीं हमको आपको ये पढ़ना ही है, ऐसे जबरदस्ती करके भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों को हम डांटते हैं फटकारते हैं क्यों, उनके हित के लिए, कोई बात उनको सिखानी है तो हम हट कर देने, ये किए बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम कितने उसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वैसे यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे बने वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो।
किसका
अभ्यास? कितनी करुणा है इसमें।
हाँ जी, किसका अभ्यास?
इस शास्त्र का, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड की बात है। अब यहाँ अकेले जीव कांड की बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो पूरे ही सम्यक ज्ञान चंद्रिका के लिए ये पीठिका लिखी है, तीनों भागों के लिए, जीव कांड कर्मकांड लब्धिसार क्षपणासार सबके लिए इस शास्त्र कहा है यहाँ पर, क्योंकि आगे जाके गोमटसार के पूरे तीनों ही भागों के बारे में उन्होंने पीठिका लिखी है। इससे अर्थ होता है कि इस शास्त्र का यानी इस कर्णान योग का अभ्यास करो, तथा अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्राभ्यास कराओ। शास्त्राभ्यास कराओ, उनको पढ़ के सुनाना है, उनके लिए कोई शास्त्र लाकर देना है, या उनके लिए अनुकूलता है जैसे बने वैसे करना है, ये पढ़ना पढ़ाना शास्त्र छपवाना उसको बांटना, अरे उसको लेके दूसरे को लेके दे देना, इतने भी उसमें तो अपनी उसमें अनुमोदना है। तो जैसे बने वैसे शास्त्राभ्यास कराओ, किसको? अन्य जीवों को। तथा जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। कितने ही है कि अपनी बुद्धि नहीं है परंतु दूसरे पढ़ रहे तो उनको अंदर से प्रमोद होता है, ऐसे भी पूछेंगे जरा सुनाओ तो क्या है, थोड़ा शॉर्ट में होता है, आप इतना पढ़ते हैं, तो इतनी भी उनकी अनुमोदना है। पुस्तक लिखवाना और पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना। घर के कोई ऐसे अन्यमति भी होते हैं, अरे ये ग्रंथ पढ़ते अभ्यास करते हैं, चलो अपने से जितना हो उनके सहाय करें, ऐसे भी भावना होती है। तो पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्र अभ्यास के बाह्य कारण उनका साधन करना, यानी अपनी ओर से जितना इसमें अपना योगदान हो सकता है उतना दे देना, क्योंकि इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है। क्या कहते हैं? जो हमें तो कुंदकुंदाचार्य के पूर्व भव की तो कहानी सबको पता है, आपको पता है कुंदकुंदाचार्य हुए ना, वो पूर्व भव में कौन थे, वो कौन सा जीव था, ग्वाला था, बच्चा था,
पूर्व भव यानी प्रायर भव।
हाँ, कुंदकुंदाचार्य जिस भव में हुए उसके पहले वे भी बालक थे, मनुष्य थे, तो जंगल में गाय चराने के लिए ले जाते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि जंगल तो वहां तो भस्मसात हुआ था, आग लग के वो राख हो गई थी, परंतु वहां एक वृक्ष था जो हरा भरा था, वो जला नहीं था। तो नजदीक जाके देखा तो उसके कोटन में अंदर शास्त्र था, तो वो ऐसा लगा ये कोई अद्भुत बात है कि इसके कारण ये वृक्ष नहीं जलाना, शास्त्र जलाना, वृक्ष जला। तो वो लेकर बराबर घर में लाके रख दिया। उसने कहा ये किसी भव किसी अच्छे, वो क्या समझता था कि कोई ऐसा भला दिखेगा तो उसको मैं दे दूंगा। तो जहां वो सेठ के घर में कोई मुनिराज आए थे तो वहां उन्होंने उनको जाके प्रणाम करके वो शास्त्र उनको दे दिया। और फिर कालांतर में थोड़े ही दिनों में वो कुछ सर्पदंश से वगैरह उसकी मृत्यु हो गई, यानी बालक वो मर गया, और मरकर अब वो सेठानी का पुत्र होके जन्मा। और वही वो तो छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, वैसे कुछ 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। तो इसको कहे परंपरा, उसको तो कुछ नहीं समझता था, वो शास्त्र है उसमें कुछ लिखा है इतनी भी बात नहीं, परंतु ये कुछ बहुत अमूल्य चीज होनी चाहिए। और वो दिगंबर मुनि को उन्होंने जो दे दिया, तो ये क्या हुआ यहाँ, इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है और महत पुण्य उपजता है। अभी मुझे याद है, अभी हमने जो पुणे में एक पंचकल्याणक हुआ था, वहां अपनी ओर से जो मराठी पुस्तक है 5-5 का सेट, वहां हमने सबको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री में रखा था। तो वहां वो तीन थे ना, कोई क्या क्या नाम,
काम करने वाले,
हाँ काम करने वाले, तो इनको उनको भी इतना, हाँ
फैक्ट्री में काम करने वाले तीन थे उनकी बात कर रहे हैं।
तो हरेक को दे के वो जय जिनेन्द्र करके नमस्कार करके बहुत आनंद से सबको देते थे। तो मुझे यही विचार आया, बताया नहीं मैं उनको, फिर भी इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है और महत पुण्य उपजता है। इस तरह इस शास्त्र के अभ्यास आदि में जीवों को रुचिवान किया। बार बार इस शास्त्र की बात है क्योंकि लोग तो शास्त्र पढ़ते भी है, परंतु पक्षपात से अगर पढ़ेंगे और करणानियोग को निग्लेक्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं या अरुचि दर्शाएंगे या उल्टा गलत प्रचार करेंगे, तो उनके लिए उनको भी यहाँ रुचिवान करते हैं। अभी आप स्वयं पढ़ने जा रहे हो और आपको ही पता चलेगा कि आज हमारे जो ज्ञान है और हमारे जो द्रव्यानुयोग का अभ्यास है और कुछ कालांतर के बाद इस करणान योग के विषय को हम पढ़ते हैं, तो हमें कितना आनंद होता है और अपनी दृढ़ता कितनी बढ़ जाती है, वह आप ही स्वयं अनुभव कर सकते हो। चले, यानी कितना फायदा हुआ ये हम स्वयं जान सकते हैं उसको। अब गोमटसार जीवकांड संबंधी प्रकरण, मूल ग्रंथ में यहाँ जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार तीनों ही प्रकरण इस पुस्तक में लिए थे, परंतु जब मैंने इसका हिंदी बनाया है तो यहाँ पर जीवकांड संबंधी प्रकरण यहाँ रखा है, अन्य जो प्रकरण है वो उसको यहाँ नहीं लिखा है। तो हम अभी जीवकांड पढ़ने जा रहे हैं, इनमें कौन कौन से विषय आने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स आएंगे और उसमें क्या क्या विषय है, उसकी यहाँ इंट्रोडक्टरी या कोई जानकारी सब दे देंगे। जो यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका, उसमें संस्कृत टीका से कहीं अर्थ प्रकट करने के लिए और कहीं प्रसंग रूप और कहीं अन्य ग्रंथ के अनुसार अधिक भी कथन करेंगे। क्या कहते हैं, जो संस्कृत टीका मूल में लिखी गई थी, गोमटसार ग्रंथ है मूल, उसकी टीका जो संस्कृत टीका, तो जितना संस्कृत टीका में लिखा है उससे भी ज्यादा यहाँ लिखा है। क्यों, क्योंकि उतना ही लिखने पर अर्थ ख्याल में नहीं आता, क्योंकि अभी वो आम जनता के लिए लिख रहे हैं, हमारे जैसे मंद बुद्धियों के लिए लिख रहे हैं, तो और एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, तो अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए अधिक लिखा। दूसरी बात, कहीं प्रसंग रूप, प्रसंग रूप का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई विषय निकला है कि यहाँ ऐसे ऐसे कोई प्रकरण आता है, जैसे अभी पर्याप्ति के प्रकरण है, परंतु वहाँ कोई ऐसा विषय नहीं था, फिर भी गणित संबंधी उन्होंने सारी बातें वहाँ समझाई है जो आगे चलकर काम आने वाली है, उसको कहेंगे प्रसंग रूप। और कहीं अन्य ग्रंथ के अनुसार अधिक भी कथन करेंगे, कोई विषय निकला है वहाँ पर, मूल संस्कृत टीका में तो उसका अधिक वर्णन नहीं है, परंतु अन्य ग्रंथ के अनुसार वहाँ अधिक भी लिख दिया है, क्योंकि ये भाषा टीका में उन्होंने और अधिक एक्सप्लेनेटरी, अधिक और विस्तार पूर्वक कथन किया है। और कहीं अर्थ स्पष्ट नहीं प्रतिभासेगा, वहां न्यून कथन होगा ऐसा जानना, और ज्यादा और क्लिष्ट बनाने से कुछ अर्थ भाषित नहीं होता, तो कहीं कहीं तो शॉर्ट में भी बताया है। तो मूल संस्कृत टीका से इतना वहां कभी कहीं अधिक और कहीं थोड़ा कम भी लिख दिया है। इस भाषा टीका में मुख्य पने जो जो मुख्य व्याख्यान है उसको अनुक्रम से संक्षेप में कहते हैं। अभी चैप्टर वाइज कौन कौन से विषय यहाँ पढ़ाने वाले हैं, जैसे गुणस्थान में क्या आने वाला है, मार्गणास्थानों में क्या क्या है, जीव समास में क्या बताने वाले हैं, हर एक चैप्टर में हर एक जो प्ररूपणा, अभी हम 20 प्ररूपणा देखने जाएंगे, तो उसमें क्या क्या विषय बाद में विस्तार से आने वाला है उसका अनुक्रम सहित यहाँ जिसको इंडेक्स बनना, पर इंडेक्स में केवल एक विषय लिखा जाता है। अब एक चैप्टर में 5-10 भी विषय समझाया है तो उसकी सूची यहाँ बताएंगे। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको जानने से अभ्यास करने वालों को सामान्यपने इतना तो जानना होगा कि इसमें ऐसा कथन है। हम क्या कौन सा विषय पूरा पुस्तक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बात का यहाँ ख्याल आ जाएगा। और क्रम जाने तो जिस व्याख्यान को जानना हो उसको वहां शीघ्र अवलोकन कर अभ्यास करें। क्या कहते हैं, हमें पंच परावर्तन का स्वरूप जानना है। अब इतनी बड़ी पुस्तक कहाँ ढूंढे, तो ये जो यहाँ जो है सूचना सूचनिका जो कहा है, यहाँ प्रत्येक अधिकार में क्या क्या आने वाला है वो लिखा है। आपको किसी को पता है वो परावर्तन का विषय कौन से अधिकार में आया है, जरा निकालो। 12वां ज्ञान मार्गणा, कषाय मार्गणा, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य मार्गणा, 29 नंबर का प्रश्न निकालना। देखो 16वां भव्य मार्गणा अधिकार है, मिला ना, उसमें दो प्रकार के भव्य अभव्य वगैरह वगैरह। अब उसमें तीसरी लाइन प्रसंग पाकर, अभी भव्य और अभव्य दो ही भेद है, फिर भी वो कितना संसार में घूमता रहता है जब तक समय दर्शन नहीं प्राप्त हुआ है, ये कितना घूम के आया है, उसको कहते हैं प्रसंग पाकर। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप पंच परावर्तन के स्वरूप को और जैसे क्रम से परिवर्तन होता है उसका वगैरह वगैरह वर्णन किया है। तो हमें कौन सा विषय कहाँ लिखा है उसकी बात इतने शॉर्ट में पता चलती है, या कौन से अधिकार में क्या है। अभी जैसे ये जो पर्याप्ति अधिकार 21 पृष्ठ पर, इसी में 21 पृष्ठ पर पर्याप्ति अधिकार लिखा है, तो वहां लिखते पहले मान का, मान यानी माप, तो वहां लौकिक और अलौकिक मान यानी वो संख्याएं वगैरह है, उसकी धाराएं, गणित है, उस सब का वहां कथन है। ये सब हम क्रम से पढ़ेंगे अभी। तो हमें कौन सा विषय कहाँ है देखना है, तो पूरी पुस्तक तो पलटा नहीं सकते, तो इतने 2-4 पेजेस में तो हमें वो विषय कहाँ है मिल सकता है। तो कहते हैं और क्रम जाने तो जिस व्याख्यान को जानना हो उसको वहां शीघ्र अवलोकन कर, यानी वो इंडेक्स में इसमें हम सूची देखकर अभ्यास करें, और जिन्होंने अभ्यास किया है वे इसको देखकर अर्थ का स्मरण करें। हमने पढ़ी है पुस्तक और हमें कोई किसी को बताना है या उसके बारे में कुछ और देखना है, वहां पर रेफरेंस देखना है, तो हम जर से उसको निकाल सकते हैं। सर्व अर्थ की सूचनिका करने से तो विस्तार होगा, ये पूरा जो डिटेल में आने वाला है वो तो फिर दोबारा यहाँ नहीं लिख सकते, वो तो अपने अपने जगह पर है ही। यहाँ तो शॉर्ट में बताया कौन सा विषय आने वाला है, कथन तो आगे है ही, इसलिए मुख्य कथन की सूचनिका, इसको सूचनिका कहते हैं, यानी अपनी भाषा में इंडेक्स, अनुक्रमणिका, क्रम से करते हैं। यानी प्रत्येक अधिकार में इसमें कितने अधिकार है, उसमें क्या विषय आने वाला है, यानी पूरी पुस्तक, अभी हम ये जीवकांड संबंधी प्रकरण में पूरा विषय क्या आने वाला है उसका अंदाजा हमें आ जाएगा। वहां इस भाषा टीका में सूचनिका द्वारा, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको सूचनिका कह रहे हैं, कर्माष्टक आदि गणित का स्वरूप दिखाकर, यहाँ गणित के प्रकरण में भी कुछ, यानी जो कैसे ऐड करना, कैसे सब्सट्रैक्ट करना, कैसे मल्टीप्लाई करना, तो जैसे कहते हैं बाद बाकी वगैरह जो कुछ, वो सब यहाँ दिखाएंगे। संस्कृत टीका के अनुसार मंगलाचरण आदि का स्वरूप कहकर मूल गाथाओं की टीका करने में आएंगे। पहले में पहले मंगलाचरण करेंगे, उसका स्वरूप समझाएंगे, और मूल गाथाएं जो हम, मूल गाथा जो है सिद्धम शुद्धम प्रणमीय, वहां से शुरुआत करेंगे। वहां इस शास्त्र में दो महा अधिकार है, शास्त्र को दो भागों में हम, दो अधिकारों में बांट सकते हैं, एक जीवकांड, एक कर्मकांड। वहां जीवकांड में 22 अधिकार है, 22 चैप्टर्स हो गए इसमें। उनमें प्रथम गुणस्थानाधिकार है, पहले में पहला अधिकार है, चैप्टर है, वो गुणस्थान का है। आप सीखे हो ना कि नहीं? हाँ, अभी अभी सब आप विस्तार से सीखेंगे। हाँ, उसमें गुणस्थानों के नाम और सामान्य लक्षण कहकर, पहले दूसरे तीसरे सभी गुणस्थानों के अपने अपने सामान्य लक्षण बताकर, उनमें सम्यत्व चारित्र अपेक्षा औदयिकादि होने वाले भावों का निरूपण करके, क्या कहते हैं, सम्यक्त्व की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, औदयिकादि भाव, औदयिकादि कौन कौन से भाव है, औदयिकादि में क्या क्या लेना, हाँ, औदयिक भाव, शोभसम भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव और पारिणामिक भाव, इसको कहेंगे औदयिकादि भाव। औदयिकादि भावों का निरूपण करके क्रम से मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों का वर्णन है। हम हमेशा पहले गुणस्थान का नाम मिथ्या तो गुणस्थान कहते हैं, हम मिथ्या दृष्टि कहा है, नाम भले वो मिथ्या दृष्टि को या मिथ्या तो कोई की है, यानी मिथ्या दृष्टि किसी जीव को नहीं पुकारा है, ये मिथ्या दृष्टि, ये समय दृष्टि, वो नहीं है, मिथ्या दृष्टि ये पहले गुणस्थान का नाम है। वहां मिथ्या दृष्टि में 5 मिथ्यात्व आदि का, ये कौन से है 5 मिथ्यात्व, सब हम देखने जा रहे हैं। साथ यहाँ तो विषय क्या है उसको ही देखना है, उसकी चर्चा तो जब हम प्रकरण आएगा तब करेंगे। सासाधन में उसके काल और स्वरूप का, सासाधन गुणस्थान का काल कितना है, उसका स्वरूप क्या है, जिसको मालूम है वो तो मन ही मन में उसका उत्तर दे रहे हैं। जिसको नहीं मालूम उसको ये तो बात पता चलेगी, ये बात आने वाली, हम सीखने वाले हैं। मिश्र का अर्थ होता है तीसरा गुणस्थान, मिश्र में उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, उसके स्वरूप का और मरण न होने का, इतनी विशेषता तो यही बता दी कि तीसरे गुणस्थान वाले में उतना अंतर्मूर्त तक उसका मरण नहीं होता। असंयत में, ये असंयत यहाँ गुणस्थान को असंयत के चौथे गुणस्थान, असंयत में वेदक आदि सम्यक्तों का, ये वेदक आदि में तेजल किस किस को लेना, वेदक आदि सम्यक्त, इन्हें और भी कोई टाइप होते हैं सम्यक्त के, सम्यक्त जो है उसके और भी कोई प्रकार है, एक तो वेदक सम्यक्त कहा यानी क्षोभसम सम्यक्त, और भी कोई ऐसे नाम सुने हैं सम्यक्त, हाँ क्षायिक और क्षोभसमिक, यानी वेदक, बहुत अच्छा, औपशमिक, तो वेदक कहो या क्षोभसमिक कहो एक ही बात है, क्षायिक सम्यक्त भी होता है और औपशमिक भी होता है। उनका और उसके स्वरूपादिक का, यानी उन तीनों का स्वरूप यहाँ हमें सुनने को, पढ़ने को मिलेगा। देश संयत में यानी पांचवें गुणस्थान में उसके स्वरूप का वर्णन है। पुनश्च प्रमत्त के कथन में, ये प्रमत्त गुणस्थान का कथन है। अभी प्रसंग पाकर प्रमाद के भेदों का बहुत विस्तार से वर्णन आने वाला है, उसके स्वरूप का। और 15 यानी 15 जो प्रमाद है उसका, तथा 80 उसी को डिटेल हम कहेंगे तो 80 भेद होते हैं उसका, और 37,500 प्रमाद भेदों का, 37,500। और वो कैसा नंबर निकालना, 30,105 नंबर का कौन सा प्रमाद है, ऐसा हम पूछेंगे। तो आप विद इन हाफ एन मिनट आपको वो उत्तर आने वाला है, ये गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि यहाँ सब सिखाया है कैसे निकालना क्या करना, और उसके लिए वो टेबल्स कैसे तैयार करना ये पंडित जी हमें सिखाते हैं। वो गुड़ टेबल कहते हैं उसका, गुड़ यंत्र, तो वो तैयार करने की पद्धति भी सिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, और ऐसे कोई बहुत गहरा है नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात नहीं। हमने गत साल तो वॉशिंगटन में ही चलाया विषय, तो ये सारे उसका। और वहां प्रसंग पाकर संख्या यानी वो प्रमाद के भेदों की संख्या कैसे निकालनी, प्रस्तार, अभी इनके जो विशेष अर्थ है ना इन शब्दों के, वो वहीं पर जाके हम सीखेंगे। परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट द्वारा, यानी नष्ट समुद्दिष्ट का इतना अर्थ है, संख्या कहेंगे कि 105 नंबर की कौन सा प्रमाद है तो उसको निकालना, और कभी क्या कहेंगे वो पूरे प्रमाद का नाम बता देंगे, किसने स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, फिर मायावी, और फिर कोई विकथा वाला, ऐसा ऐसा ये प्रमाद का नंबर क्या है, उसकी संख्या क्या है, नाम बता के संख्या निकालना या संख्या बता के नाम निकालना, वो ये नष्ट और समुद्दिष्ट में आता है। और गूढ़ यंत्र द्वारा, ये जो यंत्र बनाने टेबल्स उसके जो है वो कैसे बनाने हैं। अक्ष संचार विधान का कथन है, अर्थ अक्ष संचार यानी हम जो परम्यूटेशंस निकालेंगे उसमें अलग अलग, उसके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, वो बात यहाँ सब समझाई है। जहाँ भेदों को पलट पलट कर परस्पर लगाते हैं वहां अक्ष संचार विधान होता है। पुनश्च अप्रमत्त के कथन में, ये प्रमत्त गुणस्थान में ये सारी बातें यहाँ पढ़ाएंगे हमको। अप्रमत्त के कथन में स्वस्थान और सातिशय दो भेद कहकर, सामान्य में जो प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में झूलना होता है वो तो स्वस्थान कहेंगे, स्वस्थान अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त कब कहते हैं, कोई विशेषता है तो गुणस्थान सातवा, परंतु विशुद्धि बहुत बड़ी है, क्यों, अभी श्रेणी के सन्मुख हुआ है, श्रेणी चढ़ने वाले जो सातवा है अभी उसके विशुद्धि ऐसी बड़ी है, उसको कहेंगे सातिशय अप्रमत्त।
सो प्लस अतिशय,
हाँ।
यानी उस अवस्था का अतिशय ये है, उस अवस्था तक जीव जाएगा तो वो श्रेणी चढ़ सकेगा।
सातिशय अप्रमत्त के अधकरण होता है, ये तीन करण में, पहला है अधकरण, दूसरा अपूर्व करण, तीसरा अनिवृत्तिकरण। यहाँ गुणस्थानों के ही नाम अपूर्व करण अनिवृत्तिकरण है, तो अपूर्व अधकरण कब होता है, ये सातवें में, सातवें के अतिशय में, सातिशय अप्रमत्त में अधकरण नाम का करण परिणाम होता है। उसके स्वरूप, काल, परिणाम, समय समय संबंधी परिणाम, एक एक समय में अनुपृष्टि विधान, तथा वहां होने वाले चार आवश्यक इत्यादि का विशेष वर्णन है। ये क्या क्या है उसके नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़ के जाने वाले हैं, और जब तक किसी के मन में कोई समझ में नहीं आता है, शंका है, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। पूरे पुस्तक का विशेष समझ कर अभी भागना नहीं, उल्टा तो अंदर से उत्साह आना चाहिए कि ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। वहां प्रसंग पाकर श्रेणी व्यवहार रूप गणित का कथन है। श्रेणी व्यवहार यानी जो कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वगैरह जो है उसका यहाँ बताएंगे। उसमें सर्वधन, उत्तरधन, मुख, भूमि, ये उसके टेक्निकल शब्द है। चय, गच्छ इत्यादि संज्ञाओं का स्वरूप, ये जो नाम है उसका हर एक का अर्थ क्या है वो वहां हम जानेंगे। तथा प्रमाण लाने के लिए करण सूत्रों का वर्णन है। करण सूत्र ने फॉर्मूले, हाँ, कोई मल्टीप्लीकेशन करनी है कोई, तो उसके आसान तरीके वहां बताए हैं। पुनश्च अपूर्वकरण के कथन में ये जो आठवां गुणस्थान है उसका काल, उसका स्वरूप, परिणाम, समय समय संबंधी परिणामादि का कथन है। पुनश्च अनिवृत्तिकरण के कथन में उसके स्वरूपादि का कथन है, यानी वहां क्या क्या बातें होती है वो उस गुणस्थान में बताएंगे। पुनश्च सूक्ष्म सांप्राय के कथन में, ये कौन सा गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय? हाँ, दसवा। हाँ। प्रसंग पाकर कर्म प्रकृतियों के अनुभाग अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेद, यानी किसको क्या कहना, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि का, और पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि का वर्णन है। ये नाम तो हम लेते उसका अर्थ ख्याल में नहीं आता, मगर ये बहुत सुंदर रीति से उसका वर्णन किया है। इत्यादि विशेष कथन है सो जानना। पुनश्च उपशांत कषाय, यानी उपशांत मोह भी कहते हैं उसको। हाँ, नाम उपशांत कषाय हो या उपशांत मोह एक ही बात है, ग्यारहवा गुणस्थान। और क्षीण कषाय के कथन में उनके दृष्टांत पूर्वक स्वरूप का, सहयोगी जिन के कथन में नव केवल लब्धि आदि का, ये नाम सुना है नव, यानी नव केवल लब्धि, हमने वो पाठ अपने सुना नव केवल लब्धि रमा धरंत, यानी उनके नव केवल लब्धि प्राप्त हुई है, किसको, केवली भगवान को। कौन कौन सी है, जय बेन? हाँ, यानी नव, जिसको नव क्षायिक लब्धि कहते हैं। हाँ, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अनंत कहो या क्षायिक कोई की बात है, क्षायिक यानी केवल ज्ञान है ना, केवल लब्धि कहो या क्षायिक लब्धि कहो, तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, फिर क्षायिक सम्यक्त्व, हाँ, क्षायिक चारित्र, हाँ, फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, उसके आगे क्षायिक क्षायिक लगाना, ये नव क्षायिक वहां प्रकट है उसका वहां। और अयोगी में शैलेश्यपना आदि का कथन है। शैलेश्य ने, हाँ, अयोगी है तो अलेश्य, और उनके शैलेश्यपना प्रकट हुआ है, ये शील के भेद जो है वो सारे प्रकट हुए उनके, योग भी, योग से भी रहित हो गए हैं, वो कौन से है क्या है उसकी बात आएगी क्रम से। ग्यारह गुणस्थानों में गुणश्रेणी निर्जरा का कथन है। वहां द्रव्य को अपकर्षण द्वारा उपरितन स्थिति गुणश्रेणी आयाम और उदयावली में जिस तरह दिया जाता है उसका, और गुणश्रेणी आयाम के प्रमाण का निरूपण है। ये गुणश्रेणी क्या होती है, उसमें कैसे कैसे द्रव्य दिया जाता है, कैसी निर्जरा होती है, ये सारा कथन वहां आने वाला है। वहां प्रसंग पाकर अंतर्मूर्त के भेदों का वर्णन है। पुनश्च सिद्धों का वर्णन है। जहां जहां गुणस्थान आदि बात है अंत में सिद्धों का वर्णन आता है, इसलिए इसको सिद्धांत भी कहते हैं। ये कर्णानुयोग के ग्रंथों को सिद्धांत इसलिए भी कहते हैं, पहले सब गुणस्थानों का वर्णन करेंगे फिर सिद्धों का, मार्गणा में भी संसारी जीवों पर घटित करेंगे फिर सिद्धों पर घटित करेंगे, कौन सी एप्लीकेबल है कौन सी नहीं है। अब दूसरा अधिकार, दूसरा जीव समास अधिकार है। जीव समास का अर्थ और होने का विधान कहकर 14, यानी उसके जो अलग अलग भेद है 14 हो गए, और उसको डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे तो 19। जीव समास यानी जीवों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और 57 जीव समासों का वर्णन है। आपने शायद सुना हो ना, एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर होते हैं, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी, पंचेंद्रिय, और हरेक के अपर्याप्त पर्याप्त भेद, तो 14 हो गए। इसी तरह से और अपेक्षा लगाएंगे तो 19 हो गए, 57 हो गए। पुनश्च चार प्रकार के जीव समास कहकर वहां स्थान भेद में एक आदि 19 तक जीव स्थानों का, और इन्हीं के पर्याप्त आदि भेद से स्थानों का 98 तथा 406 जीव समासों का कथन है। यह अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भेद कितने होते हैं उसके डिटेल में वर्णन होगा वहाँ पर।
98 यानी 98 हाँ। और 406 तो समझते 406।
देखो ये हो गए स्थानों के भेद, स्थान है ना, कितने अलग अलग संख्या हो सकती है। चार प्रकार के जीव समास कहे, उसमें पहला टाइप क्या है, स्थान भेद, स्थानों के अलग अलग भेद। दूसरा योनि भेद, हम जो कहते हैं ना 84 लाख योनि, तो योनियों के भेद यहाँ बताएंगे, जीवों की अलग अलग योनियाँ उसके भेद। शंखावर्तादि तीन प्रकार की योनियों का, अभी वहाँ योनि कौन से अलग अलग नाम की होती है। और सम्मूर्छनादि जन्म भेद पूर्वक 9 प्रकार के योनि के स्वरूप और स्वामित्व का तथा 84 लक्ष योनि का वर्णन है। हम तो बहुत बार सुने ना 84 लाख योनियों में घूमता है जीव, तो उसका वर्णन यहाँ होगा। वहाँ प्रसंग पाकर चारों गतियों में सम्मूर्छनादि जन्म, ये सम्मूर्छनादि जन्म किसी को पता है, जन्म के प्रकार सम्मूर्छन आदि में किस किस को लेना। हाँ, जन्म तो तीन प्रकार के, ये गर्भज पोतज जो आगे है ना, पोतज और जरायु, वो तो गर्भ जन्म के प्रकार है। जन्म के तीन प्रकार, एक सम्मूर्छन, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। उपपाद यानी देव और नार की, वो तो कुछ माँ के पेट से नहीं जन्मते। हाँ, उनके उपपाद वहां जन्मने के ठिकान रहते हैं, तो ये उसका यहाँ वर्णन करेंगे। तथा पुरुषादि वेद संभवते हैं, उनका निरूपण है। पुरुषादि वेद यानी पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुसक वेद। सम्मूर्छन जीवों को कौन सा होगा, कहाँ कौन सा होगा, उसका वर्णन यहाँ आएगा। पुनश्च अवगाहना के भेद, देखो पहला हमने स्थान भेद देखा, दूसरा योनि भेद देखा। अवगाहना यानी शरीर का साइज, उसका अवगाहना कहते हैं। अवगाहना के भेदों में सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त आदि जीवों की, यानी वो जघन्य में जघन्य अवगाहना किसकी है, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के सारे भेद बताएंगे महामत्स्य तक के। तो जीवों की जघन्य उत्कृष्ट शरीर की अवगाहना का विशेष वर्णन है। वहां कहेंगे जघन्य अवगाहना कितनी उत्कृष्ट कितनी है, द्विंद्रियों में जघन्य कितनी उत्कृष्ट कितनी है, वो तो 12 युजन वाला शंख उत्कृष्ट है अवगाहना, आदि बातें यहाँ बताएंगे। वहां एकेंद्रियों की उत्कृष्ट अवगाहना कहने का प्रसंग पाकर, अब ये प्रसंगवश, वहां तो केवल अवगाहना बताना था, फिर भी उसका क्षेत्रफल यानी उसकी एरिया कैसे निकालना, उसका यहाँ गणित का भी प्रकरण बताएंगे। गोल क्षेत्र, ये हम भूमिति में भी सीखते थे ना, गोल है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना, हमको डायमीटर पता है या त्रिज्या पता है तो हमें उसका पूरा क्षेत्र निकालना है। शंख क्षेत्र यानी शंखाकृति का कैसा निकालना क्षेत्रफल। आयत, आयत यानी क्या, रेक्टेंगुलर है ना, तो उसका कैसे निकालना। चतुरस्र क्षेत्र यानी स्क्वायर जो इक्वल जो होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने का। और अवगाहना में प्रदेशों की वृद्धि जानने के लिए असंख्यात भाग आदि चतुस्थान पतित वृद्धि का, यानी एक प्रदेश बढ़ा, पहले असंख्यात प्रदेश ही था उसमें और एक प्रदेश, तो असंख्यात भाग बढ़ा कहेंगे, कहीं कितना भाग बढ़ता है, तो उसके चार स्थानों की वृद्धि वगैरह का कथन आए। और प्रसंग पाकर, यहाँ विषय नहीं है फिर भी यहाँ प्रसंग पाकर दृष्टांत पूर्वक षट्स्थान पतित आदि वृद्धि हानि का, ये जो षट्स्थान पतित वृद्धि हानि क्या होती है, उसका स्वरूप क्या है, उसको दृष्टांत क्या होता है, छोटी छोटी फिगर्स लेके हमें समझ में आवे ऐसी बातें वहां बताएंगे। तथा सर्व अवगाहनाओं के भेदों भेद जानने के लिए मत्स्य रचना का वर्णन है। ये मत्स्य रचना नहीं, वो तो उसका हम ग्राफिकल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो तो मछली जैसा आकार होता है, उसका वर्णन वो आगे यहाँ हमको देखने को मिलेगा, वो सब है इसमें। पुनश्च कुल के भेद, ये चौथा है। पहले स्थानों के भेद देखे, फिर योनि के भेद देखे, अवगहना के भेद देखे, अब कुल के भेद। उसमें 199,00,000 कोटि, ये इतने कुल है सब, उन कुलों का वर्णन है। तो उसमें इतनी बातें ना, तिरंचों में ये इतने होते हैं, मनुष्यों में इतने, ऐसी बातें बताएंगे। यही रुकते हैं अभी हम, आगे के अधिकारों में क्या आने वाला है वो कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। सुशील अभी